તારીખ 6/1/1994 શ્રી પરમાગમસાર બોલ નંબર 445 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 83 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ખાસ છે.
एकाग्रता करने के लिए ध्रुव को कहाँ खोजना, ये प्रश्न है. ध्रुव स्वरूप कहो, आत्मा में अविचल स्वभाव करो. ध्रुव मैंने अविचल स्वभाव સ્વરૂપ વસ્તુ છે, પરંતુ ધ્રુવ સ્વરૂપ વસ્તુ તો અન્ય તત્વ નહીં હૈ, પરંતુ આત્મા સ્વયં જે ધ્રુવ સ્વરૂપ તત્વ હે, વસ્તુ હે. વસ્તુ હૈ, ઉસે કહાં ખોજને કો જાના હૈ. જો નહીં વસ્તુ હૈ, જો વસ્તુ નહીં હૈ, ઉસે ઓર જગે કહાં ખોજને કો જાના હૈ. कुछ छोड़कर तुम्हें और जगह पर हमारे स्वरूप को खोजने को नहीं जाना है. एक समय की परिवार जो है वो किसके आधार पर है, किस अवधा से खोज लगती है, अभी किसे नीचे का पता चलता है. जहां विधि का स्वरूप समझना है, समझाना है, तो विधि स्वयं परिवार होने से उसमें ध्रुवात्मा का अवलंबन लेने के लिए विधि परिवार में होती है. तो उस किसी परिवार प्रधानता से ही समझा जाता है. एक समय की परिवार है वह कौन, जिनको किसके आधार आधार पर है, क्या अकेले परिवार है, क्या निराधार कोई परिवार अकेले निराधार होती है, क्या नहीं बन सकता. प्रश्न का पता हो सकता है कि परिवार हमको समझ में आती है, लेकिन ध्रुव हमको समझ में नहीं आता. यहाँ पर परिवार का नाम तो हमको होता है, लेकिन ध्रुव परिवार नहीं होता है, यह प्रश्न हो सकता है. अब उसको बहुत प्रैक्टिकल साल से ये बात समझाई जाती है कि एक समय की परिवार वाला दो समय में वर्तमान है. वर्तमान समय में जो परिवार वर्तमान में दिख रही है वो निराधार या किसी के आधार पर है, परिचालित नहीं करने का है. ध्रुव को खोजने के लिए प्रयोजन का उद्देश्य है, ध्रुव को खोजने का. तो वो तो हमारे पास कोई चीज है, ये किताब है. अब हम कोई ऐसी बात बोल सकते हैं क्या कि इसके परिवार को हमें दिखती है लेकिन वस्तु नहीं दिखती. किताब के परिवार है, किताब के परिवार को समझ में आती है लेकिन किताब नहीं समझ में आती, ऐसा कोई बोल सकता है क्या. कोई भी चीज हो वो तो हमारे हाथ में कुछ अच्छा बड़ा बुरा है, जिसको ऐसे भी देख सकते हैं कि गिरा है, इतना छोटा नहीं, ये नहीं समझना है, अच्छा सा बड़ा गिरा है, समझना है कि बहुत उसमें बड़बड़ाहट लाइट आती है, सामान्य हमें तो इतना लाइट नहीं दिखे, मैं इतना बड़ा और इतना प्रकाश है, जगमग करता है, तो प्रकाश पर सही आएगा। अब कोई ऐसा कह सकता है कि युवा का प्रकाश दिखता है, युवा नहीं दिखता है, ऐसा कोई कह सकता है क्या? अगर कोई ऐसा कहता है तो हम प्रश्न करते हैं कि ये जो प्रकाश हुआ वो बिना हुआ का था, बिना हुआ प्रकाश था, युवा तो आधार बिना हुआ था तो प्रकाश जो था तो किसी को आधार से देखा तो कहेंगे कि नहीं, तो युवा का प्रकाश था, तो प्रकाश को बुला रहा है, प्रकाश के द्वारा हमारा द्वार पूरा दुरा स्वस्थ करता है, क्या होता है प्रतिबद्धता विचार की स्थिति कि प्रकाश के माध्यम से प्रकाश के द्वारा हमारा ज्ञान पूरा पूरी वस्तु को पकड़ता है। जब आत्मा में ज्ञान प्रकाश है तो हम अकेला ज्ञान को कैसे पकड़ते हैं? हम किसी को अति सूचना करो तब तो युवा नहीं देखना है, सिर्फ प्रकाश को देखना है तो वो लोग अपना बिल्ली को कब बन सकता है? प्रकाश को देखते ही युवा साफ साफ बुझ जाता है, युवा नहीं, युवा नहीं आपको प्रकाश दिखते ही नहीं, क्या करोगा प्रैक्टिकली, क्या करोगा? तो जब प्रकाश को युवा को साफ अभोग होता है, युवा साथ में दिखता है, युवा का प्रकाश ऐसा दिखता है, अकेला प्रकाश नहीं दिखता है, हमको क्या दिखता है कि युव का प्रकाश है। तो जब युव का प्रकाश तुमको दिखता है, अकेला प्रकाश तुम देख ही नहीं सकते हो, युवा को छोड़ कर ऐसे आत्मा को छोड़ के उसको ज्ञान को कभी देखते हो तो ये प्रश्न है कि क्या एक समय की पढ़ना किसी के आधार बिना होती है क्या? वो शक्ति है क्या? तो वही नहीं शक्ति, ये ज्ञान तुम्हारा कथा काल्पनिक ज्ञान है, युवा का प्रकाश को देखने वाला तो ऐसा बोले कि मैं तो युवा पर नहीं देखता हूँ, प्रकाश को भी देखता हूँ, तो कहूँगा तो कुछ कल्पना में आगे आदमी ये कैसे संभव है? ये तो केवल कल्पना है इस विषय की, ऐसे भी आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान कहते ही अकेला ज्ञान नहीं है, आत्मा के साथ ही आत्मा का ज्ञान, ज्ञान माना किसका? ज्ञान एक परिवार है किसकी? आत्मा से आत्मा को देखते नहीं है, बात को देखते हुए बात कैसे बन सकती है? ऐसा कहते हैं तो आत्मा स्वयं स्वयं ज्ञान परिवार रूप प्रगमित कर रहा है, आत्मा स्वयं ज्ञान परिवार रूप परिणमन कर रहा है, तो परिणम का अगला जो आत्मा कल्याण समझ एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कि ये परिणम का हो आत्मा है। इस दृष्टांत के लिए हम ये भी लेते हैं कि जैसे हमारा हाथ में हुआ है छोटा हुआ आता है जो लगाते हैं अलंकार में दूध के दूध को हाथ में से गिर भी जाता है, गिरता हुआ ऐसा चलता हुआ दिखता है, दूसरा के नाप बढ़ कर होगा कोई गतिमान है तो तरह नजर में आता है, एकदम तुरंत नजर में आता है, लेकिन गिर के कहीं भी स्थिर हो गया तो उसको खोजना पड़ेगा कहाँ पड़ा है, कहाँ पड़ा है, लेकिन चलता होगा तो क्योंकि इसकी गति वाली पर्याय स्थूल है, स्थिर होने से थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है तो गति माने वो तुरंत नजर में आता है, ऐसे परिणमता हुआ प्रेम जो है वो तुरंत समझ में आता है। ये प्रमाण का न्याय का उपकार है, क्या प्रमाण भी उपकारी है इधर तक तो। प्रमाण के स्वरूप कार्य होता है। प्रमाण से भी आत्मा जाना जाता है, नय से भी आत्मा जाना जाता है। नय प्रमाण दोनों आत्मा को जानने का साधन है। तो नय में कम समझते कि वो नहीं आत्मा को विषय करता है, शुद्ध नहीं, निश्चय नहीं, उससे आत्मा का ज्ञान होता है। प्रमाण में कैसा होता है? प्रमाण में ऐसा है कि जहां तक शुद्ध नहीं तक नहीं पहुंचते हैं तो प्रमाण से समझाया जाता है। और समय सार में प्रमाण की प्रधानता बहुत की है। आपको तो बात थोड़ी नहीं लगेगी, थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि से समझने लगे। कुंभकुंभाचार्य देव की और अमृत चंद्राचार्य देव की दोनों की कथन पद्धति प्रमाण प्रधान है। इधर समय सार में प्रवचन सार में तो ज्ञान प्रधान है ही, लेकिन समय सार में भी प्रमाण प्रधान है। इसके बहुत सबूत है। क्या इसके बहुत सबूत है? पहली गाथा पर मांग लिखी है कि हम नमस्कार करते हैं, तो नमस्कार की गाथा है शास्त्र में पहले मांग लिखी लिखी जाती है। दूसरी गाथा में लिखते हैं कि जो आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो समय है, और जो आत्मा उद्गल के प्रदेश में स्थित है वो पर समय है। ये दूसरी बात है। पहले तो सिद्ध गति को नमस्कार किया है, गुरु मतलब गई पत्ते ऐसा करके ध्रुव गति को नमस्कार किया है। जो ध्येय है वो पर ध्येय को नमस्कार किया है, ये प्राप्ति के कारण। अब कहते हैं कि आत्मा जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है उसको हम स्वस्थ कहते हैं। ऐसा नहीं कहा कि दर्शन ज्ञान चारित्र जिसका आत्मा में स्थिर हो वो स्वस्थ नहीं है, ऐसा नहीं कहा। अब शैली देखिए, कथन की पद्धति देखिए, वो बात नहीं है। वास्तव में क्या है कि जिसकी श्रद्धा जिसका ज्ञान जिसका उपयोग आश्रम स्वरूप में स्थिर होता है उसको उसको स्वसमय कहा जाता है। लेकिन यहाँ आचार्य महाराज ने क्या लिखा कि जो आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है उसको हम स्वसमय कहते हैं। ऐसा क्यों लिखा? गुरुदेव तो बहुत प्रवचन में स्पष्ट कर देते हैं विषय। देखिए थोड़ा समझ में लायक चीज है। इधर ऐसा नहीं करके ऐसा क्या क्यों कहा? ऐसा नहीं कह करके क्योंकि सामने जो बैठा है उसका परिणमन क्या है? तो वो तो चोरी करने वाले को ही चोर समझता है। वो तो ऐसा नहीं समझता कि चोरी की प्रिया अलग है और इसका आत्मा अलग है, ऐसा तो समझता ही नहीं है। हीरा का प्रकाश और हीरा को एक ही समझता है, दिया का प्रकाश दीपक को और दीपक के प्रकाश को अलग अलग वो नहीं समझता है। इसकी समझने की यही पद्धति है। तो पर्याय पूर्वक ब्रह्म को समझने की पद्धति में जो खड़ा है उसको उसी पद्धति में समझाते हैं कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वही स्वसमय है। ये थोड़ा गहराई से विचार करें तो समझ में आता है कि एक एक बात में कुछ प्रयोजन है। ऐसा नहीं है ऐसा कहते हैं इसका कारण क्या है, ऐसा भी वो नहीं जानते थे क्या? सब जानते थे, लेकिन एक एक बात कहने में पीछे बहुत गहनता है, सूत्र है। तो अच्छा आखिर में देखिए, 47 शक्ति में एक एक शक्ति जो है वो तो वस्तु का स्वरूप है, निश्चय स्वरूप है, लेकिन उसकी परिभाषा भी स्वरूप तो पर्याप्त प्रधान परिभाषा है। प्रत्येक शक्ति की निर्मल पर्याय कैसी होती है उसका वर्णन करके उस मई जो शक्ति है उसको हम यहां प्राणी शक्ति कहते हैं, ऐसा कहेंगे क्या? जैसे बारहवीं प्रकाश शक्ति है, एक दृष्टांत ले लीजिए कि विषद स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति, क्या क्या परिभाषा किया? विषद मैंने निर्मल, स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति कि जिस शक्ति का परिणमन स्वसंवेदन होता है उसको हम प्रकाश कहते हैं। क्यों कि सामने समझने वाला पर्याय बिना द्रव को समझ ही नहीं सकता है, उसके समझने के तरीका ही एक है और उसकी चैनल ही वही है समझने के, तो सारा संसार में उस तरह से बात चली है। क्योंकि अज्ञानी को ज्ञानी बनाने का आचार्य भगवान का अभिप्राय है, उद्देश्य है कि अज्ञानी को ज्ञानी बनाना है, तो अज्ञानी जहां खड़ा है उसकी भाषा में बात करते हैं, मलेच को मलेच की भाषा में समझाना पड़ता है, दूसरी भाषा में वो समझ सकता नहीं है, यही कारण है। ऐसे ही यहां गुरुदेव कहते हैं कि जब ध्रुव को खोजना है, ध्रुव को देखना है तुझे, प्रश्न तो वो चला है, ध्रुव वाला प्रश्न चला है, तो कहते हैं कि एक समय की पर्याय है, ये किसके आधार से खड़ी है, किसके आधार पर रही है, वस्तु है, है और है, अस्तित्व मौजूद, मौजूदगी तो अनुभव में आती है हमारे, हम है कि नहीं है, हम है कि नहीं है, हम तो ना नहीं कह सकते, हम कह नहीं, हम तो इधर मौजूद है, नहीं है वो बात ही नहीं है। जब हम है और है, इसका मतलब कि भूतकाल में भी हम थे, हमारा अस्तित्व का अनुभव करते थे, वर्तमान में तो करते ही है, भविष्य में भी हम रहेंगे। શૈલી પ્રમાણ બધા વાપરે છે, પછી નવ જ્ઞાન માં વિશેષણ સમય ચાલ્યો છે, પણ શૈલી પ્રમાણ પ્રધાન જે વાપરી છે આચાર્ય મહારાજે, એની પાછળ ખાસ હેતુ છે કે જીવ પર્યાયમાં ઉભો છે। આપણે ત્યાં બહુ પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાનથી આપણે એમ જ વ્યવહાર કરીએ છીએ કે આપણે ત્યાં કોઈ ચોર ચોરી કરી જાય છે, પકડાઈ જાય છે ચોરી કરતો, પણ આપણે એને સીધો ચોર જ કહીએ છીએ કે આ મને ચોર છે, વગર પીછે ઘરમાં દાખલ કરી થઈ ગયો હતો અને પુરાણી વસ્તુ એને જતા મેં પકડ્યો, હવે ખરેખર એની પર્યાયમાં ચોરીનો ભાવ છે। વાસ્તવિકતા શું છે કે ઉસકે પર્યાય ચોરી કા એક ભાવ હુઆ હૈ, પૂરા આત્મા ચોર નહીં હૈ, કે હમ તો ઉસકો ચોર હી કહેંગે, હમારી એસી પરિણમન કરને કી પદ્ધતિ હૈ, કે પ્રેક્ટિકલ સાઇડ હૈ હમારા અનુભવ કી, તો હમ ઇસ તરહ સે હમ પર્યાય સે હી પૂરા દ્રવ કો સમજને કી હમારી સ્થિતિ જો બની રહી હૈ ઓર ખડી હૈ, उस स्थिति में आचार्य महाराज हमको आत्मा समझाते हैं, इसी स्थिति में समझाने की इनकी पद्धति है। इसलिए बहुत जगह इस पद्धति से बात चली है, बहुत जगह चली है, और इसका प्रारंभ दूसरी गाथा से मिलता है, जहां वो शास्त्र शुरू करते हैं गुरुदेव ने तो स्पष्टीकरण देते थे कि देखो आत्मा में श्रद्धा ज्ञान चारित्र का परिणाम नहीं लिया है, कि जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र का परिणमन स्वरूप में स्थिर होगा उसको हम स्वसमय कहेंगे, ऐसा नहीं कहते हैं। आत्मा के श्रम ज्ञान चारित्र में स्थित हुआ उसको हम स्वसमय कहते हैं, और यह आत्मा स्थित हुआ ऐसा कहने का प्रयोजन क्या, ऐसा करके खोलते थे इस बात को कि इसके बिना स्वसमय पर समय जो पर समय में खड़ा है वो तो स्वसमय को समझ में ले सकेगा, यानी कि स्वसमय कैसा होता है, क्योंकि खुद पर समय है समझने वाला, वो तो अवस्था में ही पूरा आत्मा को समझता है, तो उसको उसी उसी की भाषा में समझाते हैं, ये पद्धति है। તમે લોકો સાતમી ગાથા છે, દર્શન ને જ્ઞાન ની ચારિત્ર નહી આત્મા માં, એ સાતમી ગાથા,
અને
સાતમી ગાથાનો જે વિષય છે એ ગુણ ભેદ સંબંધીની ગાથા છે. અને ગુણ ભેદ જે છે એ ખરેખર સદ્બુદ્ધ અનુચ્છેદ વર્ણન એનો વિષય છે. ગુરુદેવ છઠ્ઠી ગાથાના ત્રણ વર્ણનના નિષેધને સમજાવતા હતા અને સાતમી ગાથાના ચોથા વર્ણનના નિષેધને સમજાવતા હતા. આ ગુરુદેવના પ્રવચનો બરાબર ખ્યાલ ન હોય એને ખ્યાલ હશે કે છઠ્ઠી ગાથામાં ત્રણ પ્રકારના વર્ણનનો નિષેધ કરીને નિશ્ચયને સમજાવ્યો છે. સાતમી ગાથામાં ચોથા પ્રકારના નિષેધનો ચોથા પ્રકારના વ્યવહારનો નિષેધ કરીને નિશ્ચયને સમજાવ્યો છે. એટલે એ રીતે વ્યવહારના નિષેધથી નિશ્ચયને સમજાવવાની એ છ અને સાત ગાથા ચાલે છે. સમજાવે છે નિશ્ચય સ્વરૂપ આત્માને, એકત્વ વિભક્ત આત્માને સમજાવો છો. પણ અત્યારે મહારાજ બહુ પદ્ધતિસર આ વિષયને હેન્ડલ કરે છે, બહુ સિસ્ટમેટિકલી, બહુ ગહન પદ્ધતિ છે. સમય સામે એક ગાથા પર ગુરુદેવે એટલું બધું થિંકિંગ કર્યું છે, એટલું બધું ગહન વિચારો થાય કે જયારે જયારે પ્રવચન કરે ત્યારે નવું નવું ઊંડાણ એમને પકડાણું છે. જયારે જયારે પ્રવચન કરે ત્યારે નવું નવું ઊંડાણ પકડાણું છે. અને એક ગાથા ઉપર આ પ્રવચન કરે કે એ ગાથા પર પ્રવચન કરે નહીં, વાત નીકળતી હોય ખુદ બોલે કે કઈ એ વાત નહીં આવી છે. આ નવા ભાવ નીકળતા હોય, ધ્યાન છે સુની આ નવા ભાવ નીકળે ગયા, અમારા નીકળ રહ્યા હોય નયા ભાવ વિશે બી એસા ધ્યાન કરા. તો અહીંયા ધ્રુવ કે ખોદ ને એમ જાના, અમે જાના હે એ પ્રશ્ન પણ રહ્યા હોય કે ધ્રુવ કે ખોદ કેસે પર ના, ધ્રુવ તો તમે પહોંચના હે તો કેસે પહોંચના, આપતો તો પર્યાય પર સે હિ દ્રવ મે પહોંચે એસા હિ ચેનલ હૈ, દૂસરા કોઈ ચેનલ ઇસમે હૈ નહીં. એક સમય કી પર્યાય મે પ્રથમ ધ્રુવ વસ્તુ કા મહાત્મા આના ચાહિયે. વર્તમાન સમય કી પર્યાય મે ધ્રુવ કી મહત્તા જેટલી મહિમાવંત ધ્રુવ વસ્તુ હૈ ઉતની મહિમા વર્તમાન સમય મે કે પર્યાય મે ચાલુ પર્યાય મે હમકો મહિમા ઉત્પન્ન હોની ચાહિયે. ક્યો ઉત્પન્ન હોની ચાહિયે મહિમા? ક્યોંકે વસ્તુ મહિમાવંત હૈ, ઇસલિયે મહિમાવંત વસ્તુ હૈ. મેરા મૂલ્યવાન હૈ તો ઇસકા મૂલ્ય ભાસતા હૈ. ઓર દૂસરા રસ્તા મેં પડા હોવા પથ્થર મૂલ્યવાન નહીં હૈ તો ઇસકા મૂલ્ય નહીં ભાસતા હૈ, નહીં લગતા હૈ. ઇસલિયે હમારા ધ્રુવ સ્વરૂપ અનંત મહિમાવંત હૈ તો ઇસકી મહિમા ભી હમે ભાષિત હોની ચાહિયે. સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ને જિસકા ગુણગાન કિયા હૈ, કિસકા ધ્રુવ વસ્તુ કા ગુણગાન કિયા હૈ, જે સ્વરૂપ સર્વજ્ઞે દેખું જ્ઞાનમાં કહી શક્યા નહીં તે પણ શ્રી ભગવાન જો બહુ ગીત ગાયા. સર્વજ્ઞ કી વાણી ને કિસકા ગીત ગાયા હૈ કે હમારી આત્મા કા હી ગીત ગાયા હૈ, ધ્રુવ સ્વરૂપ કા હી ગીત ગાયા હૈ. એસી અનંત અપાર અપાર મહિમાવંત ચીજ આત્મા કોણ હૈ, એસી અનંત અપાર અપાર મહિમાવંત ચીજ એસવા આત્મા કોણ હૈ, એસા પહેલે જિજ્ઞાસા મેં સર્વજ્ઞ ભી જિસકી ઇતની મહિમા કરતા હૈ, હમારા સ્વરૂપ એસા હૈ કહેતે હૈ તો વો કૈસા હોગા, કૈસા હોગા કોઈ અપૂર્વ જિજ્ઞાસા એની ઉત્પન્ન હોની ચાહિયે. અપૂર્વ જિજ્ઞાસા વિના ધ્રુવ સ્વરૂપ કા વિષય ગ્રહણ કરને કે લીએ જ્ઞાન મે અવકાશ હો સકતા નહીં, હોતા નહીં. ઇસલિયે છઠ્ઠી ગાથા શરૂ કરને કે પહેલે ટીકાકાર આચાર્ય મહારાજ ને પ્રશ્ન ઉઠાયા હૈ, એસા કોણ સા આત્મા હૈ કે જિસકો જાનના કી આવશ્યકતા હૈ, જરૂરત હૈ, इसको उत्तर देते हैं, जिसकी जिज्ञासा है इसके लिए चक्की गाथा है। पचास गाथा में भी वो बात किया है, परमार्थ स्वरूप आत्मा कैसा है, तो वह मदिंदम स्पर्शम करके वो लिंग ग्रहण की गाथा दिया। ऐसी बहुत मूल स्वरूप को दिखाने के लिए महत्वपूर्ण गाथा है। उसके पहले अंबर महाराज खुद प्रश्न उठाते, इसका मतलब क्या है कि इसका अध्ययन करने वाले को जिज्ञासा है या मैं जानता हूं ऐसा है, जो जिसको ये है कि मैं जानता हूं उसको जिज्ञासा खत्म हो जाएगी, तो उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। और देवकरण जी के लिए भी वही बात चली थी कृपालु जी के पत्र में कि आत्मा है तो परमात्मा है, बहुत जाहिर बात है। अन्यमति भी कहते हैं कि अत्ता स्व परमात्मा। तो आजकल तो देवकरण जी अपने प्रवचन में मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसे ही बोलते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये बात कोई उचित नहीं लगती, ऐसा बोलता है उसमें उचितता समुचितता नहीं दिखती है, लग जाता है ऐसा। अब तो हम आपके पास इस विषय में समझना चाहते हैं कि क्या हमारी गलती है, क्या देवकरण जी की गलती है। वो बोलते हैं कि मैं तो परमात्मा हूं, मैं तो परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। हमको लगता है कि ये कोई बोलते नहीं है, सुनते ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं बोल रहे हैं। अब आपके पास ये बात करते हैं कि उसमें कैसा होना, वास्तविकता से कैसा होना चाहिए, तो उत्तर देते हैं कि ऐसा तो सभी जीव मूल स्वरूप से तो परमात्मा है ही, उसमें कोई दो मत नहीं है। फिर भी तथापि, अब ये समझने वाली बातें हो गए, तथापि ऐसा स्वरूप जिसे प्रकट हुआ न हो, इस स्वरूप का प्रकट अनुभव वर्तता न हो, उसे इस विषय में जिज्ञासा में रहना अच्छा है। क्या देखो, दो पंक्ति में पूरी बात कर दिया है, क्या प्रकट हुआ है कि नहीं प्रकट हुआ है, तो फिर जिज्ञासा इसकी जिज्ञासा हमारे वहां जहां तक वो प्रतिभास में नहीं आए है, सीधा प्रतिभास में ज्ञान में नहीं आए है, वहां तक जिज्ञासा में रहने से खोज चलेगी। पर जिज्ञासा में नहीं रहेंगे तो मान लेंगे कि मैं तो परमात्मा हूं, निश्चय से मैं तो परमात्मा ही हूँ, मानता हूँ मैं हमारा मेरा मूल स्वरूप तो परमात्मा हूँ। लेकिन बिना जिज्ञासा एक परमात्मा हूँ एक प्रगट तो होगा नहीं, प्रगट होगा नहीं तो माना कैसा, ज्ञान में और अनुभव में तो आता नहीं, कैसे मानते हो, प्रगट हुए बिना कैसे मानते हो। तो कहते हैं कि ये कैसे कारण है, कैसी अनंत महिमा वाली हमारी चीज है, हमारा वस्तु है, कि जिसका सामर्थ्य का कोई पार ही नहीं है, ऐसी चीज कैसी है। अपूर्व जिज्ञासा आनी चाहिए, वास्तव में उस जिज्ञासा की भूमिका का असल स्वरूप वो समझना हो तो ऐसी एक बात है। जो जीव अपने स्वरूप की खोज में निकला हो, वास्तव खोज की चलती है ना इधर, ध्रुव की खोज की, वास्तव में कोई जीव अपने स्वरूप की खोज में निकला हो और उसके अभी मिला न हो, ज्ञान में आया न हो, उसको तो उसकी हालत क्या बनती है कि कहीं भी उसको रस नहीं आता है। जैसे हमारा 25 साल का इकलौता बेटा का कोई हम लोग हो जाता है, क्या कहते हैं, किडनैपिंग हो जाता है, है? लापता हो जाता है, तो गया था इधर ही बगल के फ्लैट में, आया नहीं है, और बगल वाले कहते आया ही नहीं इधर, ऐसे ही कहते हैं कि मैं तो यही बाजू में जाता हूँ पड़ोसी के वहां,
सीता पर आया ही नहीं है, घंटा हुआ, दो घंटा, चार घंटा, आठ घंटा, किधर गया, खाने का टाइम हुआ, सोने का टाइम हुआ, लापता। क्या करेंगे? खोज करेंगे। हुआ क्या? किधर चला गया? कौन ले गया? क्या हो गया? इस खोज में हमारा उपयोग कहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए। घर वाले कहेंगे कि पहले खाना खा लो फिर खोज में जाना है। खाना खाने को बैठेगा, बोलेगा तो भूख नहीं है। क्या बोलेगा? भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? तो भूख मर गई, मेरी भूख तो मर गई है। सोने का टाइम हुआ, रात को 10 बजा है, 11 बजा है, तो सुबह सुबह खोज करेंगे, नींद कैसा लगेगी? तो बोलेगा क्या? तो बोलेगा वो आपका सोने का टाइम हो गया, तबियत बराबर नहीं है, पहले सो जाना, आराम कर लो, सुबह खोज करना। अभी अंदर में कहा खोज करोगे? दिन निकलेगा तो खोज करने में भी आसानी रहेगी, सरलता रहेगी। अभी रात को मैं सोने के लिए मेरी कोई हालत है, दशा बिगड़ जाएगी खाने के सोने के। अच्छा तो बोले कि भाई क्लब में जाना है खेलने को, बोलो आप हमेशा आता है, जाएगा क्या? दुकान को बोला कि भाई ग्राहक अच्छा आया है तो मेरे पास प्रायोरिटी जो है इतनी छूट जाती है, इतनी छूट जाती है कि कहीं चैन नहीं रहता, रस नहीं आता, एक विषय में रस नहीं आएगा मुझको। इससे कुछ कम की मतलब हमारा पुरुष हो जाएगा, इस साल की पसंद है, इससे कुछ कम की मतलब है इसकी। तो ऐसे हालत होती है खोज के पीछे कि कहीं हमको रस आवे नहीं, खाने में, पीने में, सोने में, बोलने में, हंसने में, कहीं रस नहीं आए। उसी को नाम, उसी का नाम मुमुक्षु की भूमि पता हो, वैराग्य बोला है भगवान ने। वो घर त्याग कर दे या कपड़ा त्याग कर दे या उपवास कर दे, अहंकार त्याग कर दे तो आत्मा का अनुभव हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। मुमुक्षु की भूमिका होंगे, भूमिका का त्याग ही नहीं है। हमारे वो चले गए राजू भाई थे, बहुत वैराग्य में आ गए, तो घर से निकल गए, घर से निकल करके आए हमारे यहाँ गोरख में, तो घर छोड़ के चला आया। क्या बात हुई? कभी घर में नहीं रहना, मुझे वैराग्य हो गया, घर में रहूंगा ही नहीं, किधर हो गए? निवृत्ति क्षेत्र में कहीं रहना है, तो कहाँ रहना है? तो कॉन्गेटर ठीक, थोड़ा व्यवस्था करना है, कॉन्गेटर रहने के लिए मुझे कमरा चाहिए और खाने के लिए दो टाइम रोटी चाहिए, तो मैं अब बोल दो और एक कमरा मुझे दिला दो। बोर्डिंग में कमरा उसको दे दिया, समिति में बोल दिया कि आदमी दो टाइम खाएगा, उसका जो खाने पीने का हिसाब से हमारे साथ कर लेना, उसको 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 कुछ नहीं बोलना है तुमको। तो ऐसा निकल गया, तो खाली भंडार में से दो पैजामा, दो कफनी और ले लिया, वो कपड़े मेले होंगे, और दो चार दो गुटी साबुन की ले लिया, कपड़ा हाथ से धो लेगा, इस कुछ नहीं लिया। 100-200 रुपये सामान रास्ता में से ले लिया खाली भंडार में, अब क्या है, कैसे रहने लगा? अब उठा तुम्हें दो टाइम खाना खाए और अपने कमरे में बैठा रहे, तो कुछ पढ़ता रहे, कोई साथ रख ले लिया। दाढ़ी इतनी हो गई, तेल बेल करे नहीं, तेल बेल नाखे नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही मस्ती में रहे। इनके जो परिवार वाले थे चिंतित हो गए, हमारे यहाँ आए कि ये थैली आपको देते हैं, झोली, उसमें कुछ बंडल है नोटों के, उसके पाती के है, क्या हुआ है? तो उसने मेरे को बता दिया था कि मैंने घर वालों से बोला कि मेरे आप लोगों के साथ नहीं रहना है, तो मैंने उन लोगों को परीक्षा करने की थी कि जब मैं आप लोगों से अलग हो जाता हूँ, डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, तो मेरा कोई हिस्सा नहीं है इस घर में, कोई भाग लाख कुछ नहीं है, लाखों रुपए हैं और आपके हैं, मेरे कुछ नहीं है, मुझे कुछ लेना भी नहीं, तो आप क्या करोगे? बोले कि नहीं आपको देना है। अच्छा देना है, कितना देना है? तो बोले कि 4 लाख रुपया देना है। वो तो अकेला आदमी था, 4 लाख रुपया का उसका ब्याज में से भी उसका तो खर्चा तो उसमें भी बचने वाला है, 4 लाख देंगे। उन लोगों के पास करीब ज्यादा पैसे तो ज्यादा थे, लेकिन वो अकेला था इसलिए सबको बात बच्चे वाले थे इनके भाई लोग, उनको 4 लाख भी ज्यादा था। अच्छा कर लो, मेरा फार्गेट ही कर लो कुटुंब में से, क्या 4 लाख दिया है और मैंने ले लिया है और मैं दस्तक कर देता हूँ कुटुंब में मेरा कोई है ना किस्सा, मकान में, कुटुंब में, दुकान में, धंधे में कुछ नहीं है, निकल गया है। वैसे पक्का पैसा ले जाऊंगा, मैं भैया नहीं रहना है, मैं कहीं भी जाऊंगा। अच्छा तुम्हारा पैसा लेके जाओ, तो वो तो मेरा परीक्षा करने की बात है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। पैसे निकल छोड़ के निकल गया और हमारे से आया 200 रुपये का सामान लेकर के संगड़ी उनको भेज दिया। इनके भाई छोटा आया, वो बड़ा है सबसे तीनों में। पढ़ने से ही ये ध्रुव वस्तु की महिमा आती है। क्या कहते हैं कि ज्ञान में निर्णय करना यही महिमा का कारण है। निर्णय करो, निश्चय करो, पहचान करो, प्रतिभास करो, अस्तित्व ग्रहण कहो, स्वलक्ष्य कहो, स्वलक्ष्य कहो, ये सब एक ही बात है, क्योंकि एक ही पर्याय में ये सब होता है। ये स्वरूप निश्चय वाले पर्याय में ये सब होता है, अस्तित्व ग्रहण भी होता है, स्वलक्ष्य छूटकर स्वलक्ष्य हो जाता है, पहचान आ जाती है, प्रतिभास आता है, और यही सम्यक दर्शन का अनन्य कारण है। दूसरा कोई सम्यक दर्शन होने का कारण ऐसी महिमावंत वस्तु का ज्ञान, उसकी उस महिमावंत वस्तु का ज्ञान पर्याय में निर्णय करते ही यह ध्रुव वस्तु की महिमा आती है। और यह महिमा आते आते जैसा स्वरूप है ऐसा ऐसी महिमा आते ही पर्याय ध्रुव में बल जाती है, बढ़ जाती है, फल जाती है, झुक जाती है, झुकानी पड़ती
नहीं।
इतनी महिमा आई, इतनी महिमा आई। दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि सम्यक दर्शन ये कुछ दूसरी चीज नहीं, आत्मस्वरूप की अपूर्व महिमा की एक पर्याय है, दूसरा कुछ नहीं है। आत्मस्वरूप की अपूर्व महिमा आई प्रतिभा आने से, पहचान आने से, लक्ष्य आने से, कि इस महिमा बढ़ते 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 इस महिमा की एक पर्याय इसका नाम सम्यक दर्शन है और कुछ नहीं है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। स्वरूप महिमा है, सम्यक दर्शन माने स्वरूप महिमा,
ढल जाती है,
ढल जाती है, अत्यंत महिमा आई उसको, अंतत्व स्वरूप है, अंतरंग में है, उसकी महिमा आई ज्ञान में, तो इतना जोर आता है, इतना जोर आता है कि उतर जाती है पर्याय, अंदर में अंतर्मुख होकर के झुक जाती है। अनंत अनंत गुण का पिंड गुरु है, गुरुदेव तो महिमा ज्ञान में वस्तु आती है, तो कहते हैं अनंत अनंत गुणों का पिंड प्रभु है परमात्मा, इसके प्रत्येक गुण मुक्त स्वरूप है, वितराग स्वरूप है, गुण में कहा राग है, तो मुक्त स्वरूप है, बंध भी कहा है, राग नहीं, राग का बंधन भी नहीं है, इसके प्रत्येक गुण मुक्त स्वरूप है, वितराग स्वरूप है, इसका ज्ञान होकर प्रतीति हुई, बस खत्म हो गई बात, खराब हो गया बात, उसका ज्ञान होकर प्रतीति हुई, क्या लिखा प्रतीति होकर ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं किया, बाजार में आते ही ऐसा ही हूं ऐसा प्रतीति हुई, बस खलास हो गया। मुक्ति प्रतीक में आई, उसकी मुक्ति भी प्रतीक में आ गई कि मैं मुक्त स्वरूप हूं, इसलिए मुक्ति हाथ में आ गई। उसको तो मुक्ति हाथ में आ गई, स्वरूप की प्रतीक हुई उसको मुक्ति हाथ में आ गई। देखो एक ऐसी चीज है, तो ज्ञान में आते ही पर्याय को शुद्ध करने का अभिप्राय छूट जाता है। क्या पर्याय को शुद्ध करो, अशुद्धि को टालो, ये कर्तव्य छूट जाता है। मोक्ष पर शुद्ध करते संभाव, संभाव में आ जाता है। ऐसी वस्तु ऐसी है, संभाव स्वरूप वस्तु है, बंद मोक्ष से रहित है। तो मैं ऐसा हूं इसमें ये सब क्लास संभाव आ जाता है। सभी पर्यायों पर संभाव, उपेक्षा भाव, ये 445 वचनामृत है गुरुदेव का। आगे और एक प्रश्न 446 में किया है कि आत्मा का साक्षात्कार कैसे करना। तो बहुत अलग अलग दृष्टिकोण से ये विषय को चर्चा हुई है गुरुदेव की उपस्थिति में, अनुभव के विषय के बहुत से प्रश्न आए हैं और अलग अलग दृष्टिकोण से उसका उत्तर दिया है गुरुदेव ने। आत्मा का साक्षात्कार करना है किंतु कैसे करें, हमारा पुरुषार्थ उठता नहीं है। प्रश्न करने वाले के ने क्या बोला है कि हमको तो आत्म साक्षात्कार करना है तो, लेकिन पुरुषार्थ नहीं चलता है। आप कहते हैं समझ में आती है बात, हम भी भरते हैं सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही लगता है, झूठ मुठा नहीं भरते हैं बुद्धि में, उसकी सम्मति आती है। जब हम वहां कहते हैं पुरुषार्थ तो चलता नहीं, क्या करना, समस्या होती है, उत्तर देते हैं चैतन्य स्वभाव की महिमा कोई अचिंत्य है। वस्तु अचिंत्य होने से अचिंत्य महिमा अंत वस्तु बोली जाती है। अचिंत्य का अर्थ क्या है, जो ज्ञान में आती है, चिंतन में नहीं आती, अनुमान में नहीं आती, चिंतन में नहीं आती, मन में नहीं आती, विकल्प में नहीं आती। लेकिन ये विकल्प से हट करके, विकल्प का अभाव करके जो ज्ञान होता है उसमें वस्तु आ जाती है, तो मैं ऐसा ही हूं। तो लगता है कि ये चिंतन का विषय नहीं, सीधा ज्ञान का विषय है। विकल्प की आग बिना का ज्ञान होता है, विकल्प की आग में तो हमारा ज्ञान चलता है तो समझ में नहीं आएगी चीज। ऐसे अंदर से महिमा आए, ऐसे अंदर से महिमा आए कैसे आते हैं, निर्णय करते हैं गुरु वस्तु की महिमा आती है, आगे बोल दिया। ये प्रश्न है, एक साथ चला है प्रश्नोत्तर, कि शक्तियों का कारण महिमा वस्तु का ज्ञान पर्याय में निर्णय करते ही महिमा आती है। जिसको निर्णय हुआ पहचान हुई, उसका पुरुषार्थ स्व तरफ स्वमुखी पुरुषार्थ उसका उतरता है, यानी उसवत पुरुषार्थ ऊपर बिना रहता नहीं है। अपने तो यहाँ की चर्चा में ये विषय एक दिन चल गया है कि वस्तु है जो निर्णय में आती है तो लक्षण से लक्ष्य का पता चला। लक्षण कौन सा है, वेदनभूत लक्षण है, स्वसंवेदनान मात्र स्वसंवेदन सिद्धत्वार लक्ष्य लक्षण की चर्चा है। मात्र ज्ञान, एक ही लाभ ज्ञान जो स्वसंवेदन रूप है, वेदन रूप है, स्वयं का वेदन है, जिसमें स्व को अपना वेदन है, उसमें स्वभाव जो अनंत प्रत्यक्ष है उसका प्रत्यक्ष अंश भी वेदन में प्रकट है। प्रकट लक्षण है मान, आप जो सिद्धि मत हो गए, प्रकट लक्षण है मान। तो ये प्रकट लक्षण वेदन में जो प्रत्यक्षता है, क्योंकि वेदन परोक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान का ज्ञान ही निवेदन है, ज्ञान में स्वयं का वेदन है, इसलिए वहां कोई बीच में तो कोई माध्यम मीडिया का है नहीं, वो मीडिया का है, तो इसलिए वो प्रत्यक्ष है वेदन। ज्ञान वेदन प्रत्यक्ष होने से उस प्रत्यक्ष अंश से अनंत प्रत्यक्षता का प्रतिभास आता है। आत्मा ज्ञान के मूल का अंग है, बुद्ध क्या कहते हैं, नूर किसका नूर है, ज्ञान का प्रत्यक्ष पता नूर है, उसमें तेज है, तेज का बड़ा गोला है आत्मा, जैसे सूर्य प्रकाश का गोला है, ऐसे हमारी आत्मा भी अनंत प्रत्यक्ष ज्ञान का एक बड़ा महापदार्थ है, वो तो लक्षण से प्रतिमास में आता है, ऐसा मैं हूं। प्रश्न उठता है वहां स्वयं की प्रत्यक्षता भाषित हुए बिना अंतर्मुखी पुरुषार्थ किसी का उठ सकता नहीं, उत्पन्न हो सकता नहीं, ये वस्तु स्थिति है। तो कहते हैं कि ऐसा अचिंत्य पदार्थ जो स्वयं अनंत प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान की जो प्रत्यक्षता पैदा हुई नहीं की, यहां तो केवल सकल प्रत्यक्ष ज्ञान उसको बुलाए, क्या सकल प्रत्यक्ष कहो या अनंत प्रत्यक्ष कहो, वो भी इससे भी अनंत गुण सामर्थ्य में पड़ा है प्रत्यक्षता, क्योंकि तो एक समय की पर्याय है, केवल ज्ञान से भी सर्वज्ञ शक्ति जो है वो अनंत गुण है, वो तो अनंत में भाव में पर्याय प्रकट होती है। ऐसा अनंत प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष तौर से जब प्रत्यक्ष होता है प्रतिभास में, उसको प्रत्यक्ष प्रतिभासमय नैसेनाचार्य भगवान 320 गाथा के अंत में कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष प्रतिभास में अखंड पदार्थ है, उतनी अनंत प्रत्यक्षता अंदर विद्यमान है, प्रत्यक्ष अंश से जब उसका सीधा प्रतिभास आता है तो महिमा है, पुरुषार्थ है, वो अंदर से आता है, जोर से आता है, अंदर जैसे कोई पाता उठता है तो वो पानी बंद नहीं होगा, नदी का कुएं का तालाब का पानी सूख जाता है, पाता पानी सूखता नहीं है, ये पाता पानी है। स्वर परस्कार अंतर्मुखी पुरुषार्थ करता है, वास्तव में तो जो पर्याय परलक्षी है उसे स्वलक्षी करना इसमें ही महान पुरुषार्थ है, ये निर्णय करने में पुरुषार्थ लगाना है। मनुष्य की भूमिका में जो जीव आया है उसको श्री गुरु उपदेश देते हैं कि वास्तव में जो पर्याय से परलक्षी चल रही है उसको स्वलक्षी करना पहचान है, स्वलक्ष में आना ये पुरुषार्थ पहले करना ही है। इतना पुरुषार्थ कर लिया तो अंतर्मुख कैसे होना, अंतर्मुख कैसे होना, ये कार्य पद्धति की समस्या नहीं रहेगी, अंतर्मुख की विधि है वो समझ में आ जाएगी, समझ में नहीं पद्धति रूप से समझ में आ जाएगी, अनुभव उसको समझ में आ जाएगी, इसमें मान पुरुषार्थ है। यहाँ भाषा बहुत संक्षेप में कर डाली है कि तुम द्रव तरफ बल जा झुक जा, द्रव तरफ झुक जा, उतनी भाषा सुबह है कि इसमें बल झुकना है, द्रव के वक्त झुकना है, स्व के वक्त झुकना है, भाषा संक्षेप में है सुबह है, परंतु उसमें पुरुषार्थ महान है, भाषा तो उतनी है कि अपने स्वसंवेदन से त्रिकाली स्वभाव में साधा हो जा, झुक जाते हैं जब साधन होते, जैसे मुट्ठी में सुवर्ण है हो गया नहीं है, मेरी मुट्ठी में है तो मुट्ठी कटाई कर देता है, भूल गया था तो खुद था इधर उधर, तो पता चला कि मुट्ठी में है तो मुट्ठी टाइट हो जाती है,
कोई भी मनुष्य कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है, ऐसे पर रुचि, उद्गम की रुचि, राग की रुचि, वो पर रुचि के रूप आहार खाने से जो विवेक था वो निर्बल हो गया था, बड़ा हो गया था। तो सीधी बात, सीधी बात हो गई कि पर रुचि को छोड़े, स्वर रुचि को प्रकट करें तो विवेक बड़ा हो जाएगा। विवेक ज्ञान के पर्याय है, रुचि स्वतः के पर्याय होगा। विवेक ज्ञान के पर्याय है, रुचि स्वतः के पर्याय। तो ज्ञान में जो रुचि है वो पर पर जाती है, तो ज्ञान निर्बल होता है, विवेक निर्बल होता है। रुचि अपने स्वरूप के बाहर आती है तो विवेक बलवान हो जाता है, तो विवेक को पछाड़ता है। हाँ, दो एक साथ होता है। स्वतः ज्ञान का आपस में निमित्त निमित्त संबंध बनता है, पर रुचि नहीं होनी। जीव को जो पर रुचि है यही इसका विवेक को खत्म करती है, निर्बल बना देती है। और स्व रुचि रूप तारा को श्रद्धा रूपी, स्व आशा रूप तारा को श्रद्धा रूपी गुट्टी के साथ पुट से सुधार करके उसका सेवन करे तो विवेक बल मिथ्या और मटाड़ी सबल होकर के अविवेक को पछाड़े। बुरा नाटक लिया है, पहले उसको इसने पछाड़ा, अभी इसको कैसे उसको पछाड़ना है। स्व आचार रूप तारा, तारा मैंने मर्क्यूरी, उसको श्रद्धा रूपी बूटी के साथ श्रद्धा का आचरण करें, उसका पूट दे रहे, उसका सेवन करें तो विवेक बल है वो तो मिथ्या वर्ग को मिटा करके बलवान होकर के अविवेक को पछाड़ता है। तब आनंद निधि का विलास स्वयं को हो, तभी आनंद निधि का विलास होगा। ऐसा करके इतना पहले ग्रंथ लिया है। पूट मैंने बार बार सेवन करना, उसका नाम पूट है। औषधि के विषय में बोले शस्त्र पुटी अभ्रक भस्म है, तो कहीं वो अभ्रक होता है ना, और अभ्रक को अग्नि का में तपाते हैं, अग्नि अग्नि हो तभी उसकी रक्षा होती है। इसमें नहीं प्रयोग करते इलेक्ट्रिसिटी में, वो स्त्री विस्त्री जो गर्म गर्म है उसमें अभ्रक आता है, भीतर में अंदर में आता है, जब तो उतने गर्म हो तो भी कुछ नहीं हुए, वो ताकत बहुत है अभ्रक में, तो जमीन में से निकलता है ना, अभ्रक से निकलता है, जमीन में से निकलता है, एक प्रकार का पत्थर है वो, इस जाति का वो पत्थर है। तो उसको बहुत अग्नि देने से उसकी राख रक्षा होती है, फिर उसको और अग्नि देवे, फिर उसको और अग्नि देवे, अगर आप अग्नि देने तो उसकी जो भस्म होती है उसको सहस्त्र पुटी अभ्रक भस्म कहते हैं, तो फिर खिलाते हैं उसको, इस प्रकार का दर्द होता है, इस प्रकार का होता है, उसका उपयोग होता है। ऊट मैंने बार बार देना, श्रद्धा का बार बार जो परिणाम है वो श्रद्धा की जड़ी बूटी का फूट है। बार बार श्रद्धा से अपनी आत्मा में मैं यही हूँ, यही हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा कुछ लगता है, बार बार परिक्रमण आता है, परिक्रमण का पुट लगता है, विवेक बार जागृत होता है। जितना विवेक जागृत होता है और विवेक निर्बल होता है, वो निर्बल होता है उसको पछाड़ता है, बलवान है वो निर्बल को पछाड़ता है। बार बार प्रयत्न पूर्वक है, बार बार उसका जो पुट लगा रहा है जोर से दे रहा है, श्रद्धा का जोर करना बार बार। अब कहते हैं कि स्वाचार क्या है और श्रद्धा किस रीति से हो, यही कहने में आता है। उनकी पद्धति है दीक्षित जी साथ में कि जब अनादि संसार में अनादि काल से मैं पर विचार किया, क्या किया, अनादि से इस अनादि संसार में अनादि से मैंने क्या किया, अनादि का से पक्का विचार किया है, मेरा विचार कभी नहीं किया है, पर विचार किया और जिससे मेरी ज्ञान चेतना अशुद्ध हुई है, ऐसा करने से मेरी ज्ञान चेतना अशुद्ध हुई है। अब स्वाचार रूप तारा का सेवन करने में आए तो अविनाशी पद को भेजिए, इसका पेट भेट होगी अविनाशी पद के, क्या सब आचार रूप स्वाचार रूप तारा का सेवन करने में आए, इसके लिए मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं किस प्रकार से उसको प्राप्त कर सकता हूं, ऐसा उनका उस विषय में जाना पड़ता है, ऐसी जिज्ञासा से ऐसी जिज्ञासा होना। और प्रथम बहुपद अपना उपयोग प्रकाश है, सभी शास्त्रों में ये बात आएगी, कहां से चलना, उपयोग प्रकाश से भीतर में जाना, उपयोग सामान्य ज्ञान सामान्य यही प्रकाश है। आत्मा को ग्रहण करने के लिए जैसे हीरा को समझने के लिए हीरा की चमक ही काम में आती है, हीरा को परखने के लिए समझने के लिए उसके जो प्रकाश है उसमें से जो तेज निकलता है ये चमक को ही समझना पड़ता है, इसे ही पता चलता है ये हीरा नहीं है पत्थर है या हीरा है तो कितना मूल्यवान है, ऐसे ऐसे ज्ञान जो हीरा है आत्मा जो हीरा है उसका तो ज्ञान ही प्रकाश है, ज्ञान से ही पकड़ने में आता है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। ऐसे उन ज्ञान से आत्मा को ग्रहण करने का संकेत किया है, ज्ञान वेदन भी ज्ञान सामान्य में है, ज्ञान विशेष में तो अनेकाकार होते हैं, उसका आविर्भाव हो जाने से राग में राग के विषय में एकत्व हो ही जाता है, पुरुष से तो संसार पनपता है और चलता है, ऐसे ही संसार चलता है। अनुभव प्रकाश में आठवां पेज पर